तालाब के पास से बहा करती थी नदी, तालाब नदी को देख देख कर बहुत हंसता था और कई बार तो रात के अंधेरे में नदी को समझाता भी था कि इस तरह से अपना सारा पानी तू ले ले जाकर के समुद्र को देती रहती, अरे कुछ तो अपने पास बचा के रख, नहीं तो एक दिन तू सूख जाएगी, सारा पानी सागर में चला जाएगा तेरा। नदी मुस्कुराती रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी और निरंतर जो पानी उसमें आता था सब बह करके सागर की तरफ चला जाता था। तालाब रोज उसे कोई ना कोई बात कह करके और समझाता था, कभी कभी व्यंग भी करता था। और जैसे जैसे बारिश खत्म हुई, ठंड का मौसम आ गया, नदी की धारा सचमुच पतली पड़ने लगी, पर नदी फिर भी बहती रही। अब फिर एक बार तालाब ने टोका कि देख, सारा पानी खत्म होता चला जा रहा है और तू सूख जाएगी ऐसे। और आ गई गर्मी, अब गर्मी के दिन में भी भले ही कितनी भी पतली हो गई धारा नदी की, लेकिन उसमें पानी बना रहा, पर तालाब अपनी तरफ नहीं देखता। वो भरा हुआ पानी धीरे धीरे, जो कि कहीं नहीं जा रहा था, तालाब का पानी धीरे धीरे सूख करके और नष्ट हो गया। तालाब ही स्वयं समाप्त हो गया, नदी देती चली गई सागर को, फिर भी बहुत पतली धार में बहती ही रही, उसका पानी नहीं सूखा। ये उदाहरण है कि हम अपने जीवन में, हमें लगता है कि हम देते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या शेष रहेगा, लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। वृक्ष जैसे कि अपने फल देता है फिर भी भरा पूरा रहा आता है, देने वाले का भी हाथ ऐसे ही वृक्ष के समान हो, जो हमेशा देता चला जाता है फिर भी हरा भरा और फलों से लदा हुआ हमेशा रहा आता है, ऐसी दान की महिमा है। लेकिन उस दान को किस प्रकार से देना चाहिए, ये बात जरा समझने की, क्योंकि जो भी हमें वस्तुएं धन संपदा प्राप्त होती है उसमें पुण्य निमित्त बनता है, लेकिन उस संपदा के मिलने पर यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं तो वास्तव में ये हमारी अपनी वर्तमान की साधना कहलाती है, वास्तव में पुण्य तो ये है। पूर्व संचित पुण्य के निमित्त से हमको उस संपदा को भोगने का अवसर मिलता है, लेकिन उस संपदा का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को अपने हाथ से पतित करते हैं, तब हम पुण्यात्मा नहीं कहलाते। और यदि हम उस धन संपदा का सदुपयोग करते हैं और उसे दान में परोपकार में लगा देते हैं तो वास्तव में हम उस संपदा के मालिक कहलाएंगे, और इतना ही नहीं, उस संपदा से हमारे जीवन का पतन नहीं होगा बल्कि हम अपना उत्थान ही कर लेंगे। बताइए, धन संपदा पतन का कारण भी बन सकती है, धन संपदा हमारे उत्थान का कारण भी बन सकती है। कैसे? यदि धन संपदा का हम भोग विलास में उपयोग करते हैं, संचय करके रखते हैं, उससे किसी का परोपकार नहीं करते तो वो हमारे अहित का कारण बनेगी, पर यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं, उससे दूसरे का उपकार हो इस तरह की भावना रखते हैं तो वही संपदा दान के रूप में जाकर के और हमारे और दूसरे के उपकार में काम आती है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दान, इसीलिए जिससे हमारा भी कल्याण हो और दूसरे का भी उपकार हो, इस तरह की भावना से जो अपनी वस्तु का त्याग किया जाता है उसी का नाम दान है। पूर्णतः त्याग कर देंगे तब तो फिर पूर्ण निवृत्ति कर देंगे तब तो त्याग धर्म जो मुनि जनों को घटित होता है वो होगा, लेकिन हम पूर्णतः निवृत्त नहीं हो रहे हैं तो जितना दूसरे के उपकार के लिए है उतना हम दे देते हैं, तो ये प्रक्रिया दान की प्रक्रिया कहलाए। देने से ही हमारे उस दान की कीमत होती है, रखे रहने से उसकी कीमत नहीं होती। हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक सेठ जी अपने पास बहुत संपदा रखते थे, कभी खर्चा नहीं करते थे, ठीक से पहनते ओढ़ते खाते पीते तक ठीक से नहीं थे, दूसरे को तो देने की बात ही छोड़िए, लेकिन भगवान के भजन करने में बड़ी उनकी रुचि थी और बाकी सब उनके भीतर ये बुराइयां थी, पर एक उनकी अच्छाई भी थी कि भगवान का भजन बहुत करते थे। और एक बार जो है एक पंडित जी वहां आए, वे भगवत भजन में बहुत देवी रुचि रखते थे, तो सुना सेठ जी ने कि वो जो पंडित जी आए हैं वे भगवान के भजन में बहुत रुचि करते हैं, उनकी सभा में तो भगवान का भजन ही होता है। तो वे पहुंच गए सभा में जाकर के, सभा में उनको पहुंचते देख करके कोई उनके लिए सम्मान तक नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि आ जाओ सेठ जी आगे बैठ जाओ, वहीं पीछे बैठ गए तो बैठ गए, बस लोग मन ही मन हंस रहे थे कि जी काहे को यहां आ गए, इनका क्या धर्म से लेना देना, ये तो दूसरे के लिए कभी कुछ देते नहीं, अपने खुद भी खाने पीने में भी अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करते, रखे संचित कर। अब भगवत भक्ति होती रही और उसी बीच में पंडित जी ने जो है और थोड़ा सा भगवान की भक्ति करते करते, और हमें अपने वस्तुओं का त्याग भी करना चाहिए, दान भी देना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, ऐसी बात कही। और वो बात उसी दौरान सेठ जी के मन को भा गई और सेठ जी उठे और उस दिन वो दुकान से जितना धन लेकर के घर जा रहे थे वो सारी की सारी थैली चांदी के सिक्कों से भरी और पंडित जी के सामने भगवान के चरणों में और चढ़ा दी। चारों तरफ जय जयकार होने लगी, लोग जो है पंडित जी को हाथों हाथ लेकर के वहां सामने और बिठाने लगे, आप यहां बैठिएगा आप यहां बैठिएगा। अब जो है सेठ जी जो है बड़े चकित फिर भी उनके मन में और थोड़ा भाव आ गया, उन्होंने कहा अरे वाह भगवान के दरबार में भी, और यही बात कि जिसके पास धन संपदा है उसी की यहां पर जय जयकार होती है। तब उन लोगों में से ही किसी ने खड़े होकर के कहा कि सुनो सेठ जी, आपकी धन संपदा का सम्मान करना होता तो पहले जब आए थे तभी आपको बुलाकर आगे बिठा लेते, हमें आपके धन संपदा से कोई मतलब नहीं, आप पीछे बैठे थे, आपने जब उस धन संपदा को त्यागने का विचार किया हम इस बात का आपका सम्मान करते, वैसे तो आप और भी लोगों के पास बहुत धन संपदा है, धन संपदा का सम्मान नहीं है, धन संपदा अगर भगवान के चरणों में समर्पित कर दी जाती, दूसरे के परोपकार में लगा दी जाती तब फिर उस धन संपदा की प्रतिष्ठा होती और जिसने वो दी है उसकी भी प्रतिष्ठा होती है। भाई संचय करने से हमारी प्रतिष्ठा नहीं है, संचय करने से हमारी बढ़ाई नहीं है, जितनी हम उस धन संपदा को देते हैं परोपकार में लगाते हैं, दो ही हाथ उली चाहिए यही सयानों का। हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि जो हमारे पास संचित है उसे हम दूसरे के उपकार में भी लगाएं, आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के लिए भी दें, एक शावक के जीवन में। और इस संपदा का विभाजन करते हुए आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जितनी संपदा है उसका 25% अगर वो दूसरे के उपकार में लगाता है तो सबसे श्रेष्ठ दान है, अगर 20% लगाता है तो मध्यम दान है, और कम से कम अपनी संपदा का 10% तो वो दूसरे के लिए परोपकार में लगाता है, तो यह जघन्य दान की प्रक्रिया शावक के जीवन के लिए लिखी हुई है। हमें संचय करने का निषेध नहीं है शावक के जीवन में, लेकिन संचित राशि का सदुपयोग करने की भावना भी श्रावक के मन में होनी चाहिए। इतना ही त्याग धर्म श्रावक के लिए कहा। मुनि जनों के लिए तो संचय करने की बात ही नहीं है, उनके पास तो जो संचित था उन्होंने और उसका पहले ही उससे निवृत्त होकर के और त्याग धर्म को अंगीकार कर लिया, लेकिन श्रावक के जीवन में तो त्याग धर्म कैसे आवे। सो आचार्य भगवंत तो कारी हैं, उन्होंने श्रावक को इतना आसान तरीका बता दिया कि जो धन संपदा वैभव तुम्हारे पास है, जो तुमने संचित किया है, उसको जो है उसका 10% ही सही कम से कम परोपकार में लगाते रहना, क्योंकि तकतेन भुंजीता, ग्रहण तो त्याग पूर्वक ही शोभा देता है। जितना हम ग्रहण करें उसका 10%, 20%, 25%, जितनी जिसकी सामर्थ्य है वो अवश्य त्याग करे, क्योंकि ग्रहण अकेले करने से तो जीवन का पतन ही होता है। अपन भोजन ग्रहण करते जावे और जो मलमूत्र है उसका विसर्जन न करें, बताइए तो हमारा जीवन चलेगा क्या? नहीं चल सकता। ठीक ऐसे ही जो हम अपने जीवन में संचित करते हैं उसका हम जब तक त्याग नहीं करते, ग्रहण ही करते चले जाते हैं, तो हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। ऐसा विचार करना चाहिए और अपने जीवन में जो गृहस्थ है उसे दान के रूप में इस त्याग धर्म को अंगीकार करना चाहिए। आचार्यों ने लिखा कि दान चार प्रकार, चार संघ को, चारों प्रकार का दान चतुर्विश संघ को देना ही सबसे श्रेष्ठ है। परोपकार पहले किसका करना? जो स्वयं दूसरे के उपकार में लगा है उसका उपकार करना तो सबसे बड़ा उपकार है। प्राणी मात्र का उपकार करना बहुत अच्छी चीज है, वह भी करना, लेकिन सबसे पहले प्रमुखता किसको देना? जो अपने आत्म कल्याण में लगा है और जिसके माध्यम से और जीवों का कल्याण हो रहा है, वो कौन है? मुनि आरि का, श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संघ है, जो कि वीतरागी भगवान के प्रति श्रद्धा रख करके और जितना बनता है उस मोक्ष मार्ग पर चलता है। तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले इस चतुर्विध संघ को सबसे पहले इसके उपकार के लिए अपना संचित धन का सदुपयोग करना, ये सलाह श्रावक के लिए आचार्य भगवंतों ने दी। और उसी माध्यम से धर्म तीर्थ चलता है। सबसे पहले ये प्रक्रिया इस काल में, अवसर्पणी काल में, इसके पहले और भी हुए हैं, लेकिन इस अवसर्पणी काल में भगवान ऋषभदेव को सबसे पहले आहार दान दे करके और राजा श्रेयांश और उनके भाई राजा सोम, इन दोनों ने इस दान तीर्थ की स्थापना की थी कि हमारे पास जो संचित है उसका क्या करें, हम कैसे सदुपयोग करें। तो कहते मोक्ष मार्ग को दे करके उसका सदुपयोग करना, ये प्रक्रिया लिखी। लेकिन देते समय, अब देना तो है पर देते समय सावधानी रखना, क्योंकि दान तीन तरह का होता। एक संकलेश पूर्वक दिए जाने वाला दान भी है जो तामसिक दान कहलाता है, जिसमें देने में संकलेश हो रहा है, दे तो रहे हैं लेकिन अत्यंत संकलेश पूर्वक। कैसा संकलेश? उधर 500 रुपया बोले, सामने वाले से कहा कि बोल दो हमारे 500, यहां तक वो आ नहीं पाया, अब मन ही मन में अभी तक नहीं बोल रहे हमारा नाम, हम 500 रुपया कह चुके, माइक पर से नहीं बोल रहे। अब बामुश्किल उनका नाम माइक पर से जब तक नहीं बोला गया तब तक संकलेश। और फिर बाद में पहले ऐसा डिक्लेयर हुआ था कि जो जो 500 रुपया देंगे उनका नाम पटिया पे लिखा जाएगा, बोर्ड पे लिखा जाएगा। अब रोज आकर के देख रहे कि बोर्ड पे लिखोगा कि नहीं लिखोगा, बड़ा संकलेश। दे तो दिया लेकिन जब तक नाम नहीं लिखा गया तब तक संकलेश, बोला नहीं जाए तो संकलेश। कोई चार आदमी जाने के लिए कि भैया इनने दाव है तो बड़ा संकलेश। ऐसा दान संकलेश पूर्वक दिया हुआ दान तो तामसिक दान कहलाता है। ऐसा दान अपन कई बार दे चुके हैं, आज तो इसी प्रकार के दान की प्रक्रिया चल रही। पहले से ही कह दिया जाता है कि जो दान देगा उसका पटिया पर नाम। हमने कई जगह देखे कि पटिया भरे पड़े हुए हैं, सीढ़ी सीढ़ी पर नाम लिखा हुआ है और बोर्ड बना बना करके और समिति को लगाना पड़ते। तीर्थ क्षेत्रों पर तो देख लो आपके भगवान कमती देखते हैं, बोर्ड ही बोर्ड, बोर्ड ही बोर्ड, जेब एक भरा गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, सबके दान राशियों के नाम लिखे हैं, अपने नाम पढ़वे तक की फुर्सत नहीं है वहां पर, इतने नाम लिखे। पहले से ये संकलेश है इसमें, जरूर से नाम देख करके हर्षित होना इसका मतलब है कि नहीं लिखा जाता तो संकलेश होगा। नहीं, हमने तो लिखने का भाई नहीं था, हमने लिखा है तो हम लिखा है तो उसका आनंद ले रहे कि नहीं, नहीं तो कह देते कि मेरा नाम नहीं लिखा जाना चाहिए, मैंने नाम लिखवाने के लिए नहीं दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमारे मन में यही भावना आती कि नाम लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। ऐसी दान की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, अपन लोगों ने इसी को प्रसिद्ध कर दिया है कि ऐसा ऐसा दान देंगे तो यहां पर लिखा जाए और नहीं लिखा जावे तो अत्यंत संकलेश होने लगता है और बाद में लगता कि काय को दिया। एक चीज और है कि दान तिरस्कार पूर्वक नहीं देना, ये दूसरी चीज। दान को हम कई बार तिरस्कार पूर्वक देते हैं, वो सब राजसिक दान। तिरस्कार पूर्वक मतलब मैं दूसरे से बढ़ चढ़ के दान दूंगा, दूसरे को नीचा दिखा करके रहूंगा, मेरा दान ही आज के दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया। ये जितनी भी बोली की प्रक्रिया है उसमें इस बात का बहुत खतरा रहता है। वैसे खराब प्रक्रिया नहीं है, अच्छी प्रक्रिया थी कि जितने जितने बोले सो देगा वो, हाँ, लेकिन बोलने के बाद देता कौन है? आखिरी वाला देता जिस पे बोली टूटती, वो बोल चुके सब जने, हमारे 500, हमने कि हमारे 1000, तुमने कि हमारे 1500, तो दियो भी 500 1500 कहां नहीं दे रहे थे, दियो। जब बोल गए एक बार मुझसे बोल दिए कि 500 तो देना पड़ेंगे 500, और फिर बोले 1500 तो भी 1500 भी देना पड़ेंगे, बोली यानी बोल, बोल दिया आपने। लेकिन ऐसा कौन करता है? सिर्फ बोल रहे हैं इसके लिए कि दूसरे को डिफीट कर सकें, डर सकें, सावधानी से बोले कि दूसरे से बढ़ने के लिए नहीं, मेरा मन तो हो रहा है कि मैं और दूं। अगर 500 रुपए दिए हैं तो दूसरा को 1000 देता, मेरा मन उत्साहित है कि आप भी 1000 दो, मैं आपसे और अधिक एक कदम, मैं 1500 देता हूं। मैं 1500 इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपके 1000 से ज्यादा देना है, बल्कि मेरा तो मन हो रहा है कि मैं इतने रुपए और दूं, और वो जो 500 बोले कि वो भी दूंगा, और 1000 1500 बोले तो वो भी दूंगा। एक ही स्थान है जहां हमने एक बोली देखी, श्री जी की बोली होती है, वर्ष में एक बार होती है सायपुर में। हम तो देख करके दंग रह गए, उनने बोली शुरू की 5 रुपया से, हमने की क्या कर रहे आप, कहले महाराज ठहरो, तो एक ने बोले 5, दूसरा बोलता 7 रुपया, तीसरा कहता 11 रुपया। अरे हमने की जी कहां तक चलेगी इतनी इतनी थोड़ी थोड़ी सी। अब वो चलती रही, मुझे बाद में धीरे से उन्होंने कहा कि महाराज ये बोली ऐसी नहीं है, ये बोली जिसने जितनी बोल दी भगवान के सामने देना पड़ेंगे, 5 रुपए वाला 5 रुपए देगा, 7 बोलने वाला 7, और अगर उसी 5 वाले ने 11 बोले हैं तो 5 भी देगा 11 भी देगा। और सचमुच जो है बोली तो खत्म हुई 301 रुपया पर, लेकिन 15,000 20,000 रुपए इकट्ठे हो गए, क्योंकि 299 बोलने वाले को 299 देना और 301 वाले को 301 देना और 295 वाले को 295। बोली ऐसी बढ़ेगी, 2-2, 4-4 रुपए से बढ़ेगी। और आखिरी में इतना ही नहीं, तिरस्कार ना हो किसी का कि मैंने 301 में ले ली इसलिए मुझे ही आगे आना पड़ेगा, नहीं, जिसने 301 में बोली ली वहीं पर भगवान के अभिषेक के लिए दंड रखे रहते हैं चांदी के, उसमें से एक दंड उठाता है वो, और फिर जिन जिन लोगों ने 5 रुपए 7 रुपए 9 रुपए 11 रुपए बोले भी अपने स्थान पर खड़े हो जाते, उनके पास जाता है कि आपकी आज्ञा हो तो श्री जी का अभिषेक मैं करूं, क्योंकि आपका भी सहयोग उसमें है,
मैं ही अकेला 300 रुपए देने वाला नहीं हूं, मुझे ऐसा कोई अहंकार नहीं है। आप 5 रुपए देने वाले भी इस दंड को हाथ लगाकर मुझे आज्ञा दें कि मैं श्री जी का अभिषेक करूं। बताइए दान की प्रक्रिया कितनी सुंदर रही होगी और आज अपन ने इस प्रक्रिया को किस तरह बना लिया, मान सम्मान और अपमान की प्रक्रिया हो गई। नहीं, इसलिए ये राजसिक दान का निषेध है अपने यहां पर। तिरस्कार नहीं करना दूसरे का, स्वयं अहंकार करके कि ऐसा दान दूंगा कि चमत्कृत हो जाए सारा संसार, किसी ने नहीं दिया होगा ऐसा दान, जय जयकार हो जाएगी। ऐसे मान सम्मान बढ़ाने की इच्छा से, दूसरे का तिरस्कार करने की इच्छा से जो दान दिया जाता उसे यहां दान नहीं कहा। सात्विक दान प्रति उपकार की भावना से रहे, अपना कर्तव्य मानकर और अपने और दूसरे के हित के लिए जो दिया जाए वो सात्विक दान। क्या? जिसमें प्रति उपकार की कोई भावना नहीं, मेरा कर्तव्य है क्योंकि आचार्य भगवंतों ने मुझे, अगर गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के लिए ये उपदेश दिया है, आदेश दिया है कि अपनी संपत्ति का इतना प्रतिशत तो तुम्हें देना ही, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, पूरी विनय के साथ कैसे देना कि लेने वाले का उपकार मान करके देना। बताइए, अपन तो सोचते कि देने वाले का उपकार नहीं भैया, देने वाले का उपकार जिस दिन होने लगेगा उस दिन यही ऐसी जैसी स्थिति आज बनी है बन जाएगी। हमारी परंपरा तो रही कि लेने वाले का उपकार, देने वाले का उपकार नहीं है, जिसने ग्रहण कर लिया उसका उपकार है। देख लो रोज आहार की प्रक्रिया में, देख लो कि वहां पर देने वाला बड़ा है कि लेने वाला। बताओ, जब वाचना हो रही थी सागर में, विद्वान बैठे हैं और दान की चर्चा चली, तो आचार्य श्री से एक पंडित जी कहने लगे कि महाराज और जो भी हो आहार दान के समय तो मुनि जनों का हाथ भी नीचे रहता है, शावक का ऊपर रहता है, है? तो आचार्य श्री तो हाजिर जवाब है और बढ़िया विनोद भी करते हैं। तो आचार्य श्री बोले कि पंडित जी ये तो बताओ कि नीचे वाला हाथ कांपता रहता है कि ऊपर वाला कांपता रहता है? नीचे वाला नहीं कांपता, कांपता तो ऊपर वाला है कि कांपता बंद में कर ले में? दे तो रहे हैं, मेला तो क्या करेंगे, फिर सब धरा रह जाएगा। देने वाला वहां बड़ा नहीं है, देने वाले का हाथ ऊंचे होते हुए भी बड़ा तो वो मान रहा है, लेने वाले को कि स्वीकार कर लो भगवान, नहीं तो मेरा सब व्यर्थ, मेरा इतना धन संचय व्यर्थ हो गया अगर कोई लेने वाला नहीं हो। अगर विनोबा ने लिखा कि अच्छा है कि लोगों को भूख लगती है, अगर भूख नहीं लगती तो मैं तो अतिथि को दान देने की इस प्रक्रिया से ही वंचित रह गया। मुझे यह सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ कि कोई लेने वाला है, इसलिए मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा विचार करके इतनी विनय और उपकार की भावना से और दान की प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर हम इस दान की प्रक्रिया को इस तरह से करेंगे तो ही हमारे जीवन में ये दान की प्रक्रिया हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाली होगी। भैया ग्रहण ग्रहण तो संसार में लगा ही हुआ है, लेकिन ग्रहण कितना करना इसका विचार कर लें, और किस प्रकार से करना और कब तक करना। ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं, हमने आपसे त्याग की उदान की बात कह दी, आप कहोगे कि ग्रहण करने की बात भी कहना चाहिए थी, तो भाई ग्रहण का निषेध नहीं है, लेकिन ग्रहण कितना, बीज राग फल भोग वे ज्यों किसान जग माए। हाँ, ग्रहण कितना, भोग कितना, कितने बीज राग फल भोग वे, अरे कुछ तो अपने संचय में पल्ले में रख लो, फिर उसके बाद बाकी सब। एक किसान भी पहले पूरी फसल नहीं खाएगा, पहले नंबर फसल में से आगामी काल के लिए बीज निकाल करके रख लेगा, मर तो मर जाएगा लेकिन बीज में से निकाल के नहीं खाएगा। बीज तो रख दिया उसने, बाकी बचे तो नहीं बचे, बचे तो ठीक है, नहीं बचेगा तो उधार लेकर के अपना साल भर काट लेगा, लेकिन बीज में से बेचेगा नहीं, मैं बीज में से खाएगा। ये क्या चीज है, कहते बीज राग फल भोग में ज्यों किसान, त्यों चक्री नृप सुख करे धर्म विसारे। अपने धर्म को नहीं भूलते हुए, क्योंकि मैंने कोई पुण्य पूर्व में किया होगा इसलिए ये वस्तुओं का मुझे और आज सानिध्य मिला है, मैं इनको किस तरह से ग्रहण करूं, किस तरह से इनको भोगूं कि मेरे आगामी जीवन में धर्म बना रहे। तो ग्रहण उतना ही जिसमें कि या कि भोग उतना ही जिसमें कि मैं धर्म से वंचित ना हो, और इतना नहीं किस तरह से करें भोग कि दूसरे का हक ना छीने, घर गृहस्थी में दूसरे का हक छीनने लगे तो रुक जाओ। ऐसा होता घर गृहस्थी में, चार चीजें हैं और चार लोग हैं तो एक एक के जुम्मे एक एक चीज पड़ी, और अगर उसमें से कोई दो लेने की जिद करे तो एक का हक छीन गए।
जो विद्या सागर सुती, जो विद्या सागर सुती गुरु के बोले भगवान महावीर स्वामी की दस लक्षण महापर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इस दशलक्षण महापर्व के अवसर पर चार बातें सीखी हैं कि रोज जीवन में गुस्सा करने, क्रोध करने के मौके आते हैं, हमको एकाध मौके पर क्षमा भाव भी धारण करना चाहिए। यदि हम पूरी तरह से हर मौके पर क्षमा भाव धारण करें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाते हैं तो एकाध मौके पर तो करके देखना चाहिए कि कैसा लगता है। हमने ये भी सोचा है पिछले दिनों कि कभी कभी हम अपने आसपास के वातावरण को लेकर के या अपने आसपास लोगों के व्यवहार को लेकर के कभी कभी कठोर हो जाते हैं, और फिर हम बड़े कठोरता से पेश आते हैं, ये हमारा व्यवहार ठीक नहीं है। हमें दिन भर में एक मौके पर ऐसा भी करना चाहिए कि हमारी कोमलता, हमारी मृदुता बनी रहे और हम कठोर ना हो पाए। हमने ये भी अपने मन में विचार किया है कि ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है या कि हमारे मन का संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कई बार कि पता नहीं क्या सोच करके और हम दूसरे को ठगने का मन बना लेते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि धोखा दे भी देते हैं दूसरे को और मन ही मन बड़े खुश होते हैं। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, दूसरे को अगर कभी धोखा देने का मन हो भी तो हम थोड़ा अपने को संभाल लेंगे, और धोखा अगर हमारे हाथ से किसी को दिया गया है तो बाद में कम से कम प्रसन्नता अनुभव तो नहीं करेंगे, गिल्टी फील करेंगे और आगे कभी धोखा ना दूं ऐसा मन बनाएंगे, क्योंकि संस्कारवश कई बार मन में ऐसा भाव आ जाता है। तो हम उसके बाद कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि प्रसन्नता महसूस ना करें दूसरे को धोखा दे करके, नहीं तो ये आदत और बढ़ती चली जाए। और हमने अपनी सरलता को बनाए रखने का, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखने का भी विचार किया है, और इतना ही नहीं हमारे चारों तरफ बड़े आकर्षण हैं। पांचों इंद्रिय और मन को लुभाने वाली सैकड़ों चीजें हैं हमारे मन में, उन चीजों को लेकर के बहुत जल्दी लोभ जाग जाता है। अब हम क्या करें, लोभ जागृत हो तो क्या करें, उन चीजों को जैसे अपन अपना बजट कम होने पर ग्रहण नहीं कर पाते हैं, या कि जैसे कोई चीज खाने का बहुत मन है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, बीमारी है, डॉक्टर के कहने से उस चीज को छोड़ना पड़ता है, तो क्यों ना हम उसको अपने मन से ही निकाल दें और उसके प्रति अपने मन में लोभ न रखें, उस चीज को लेकर के अपने मन को विकृत ना करें। जो चीज नहीं मिल पाई है उसके अभाव में हमारा मन संक्लेशित होता है, मलिन होता है, और जो चीज हमारे जीवन में मिल गई है उसका आनंद ही नहीं ले पाते हम। तो हमने तय किया है कि जो चीज हमको मिली है, हमने पहले पुण्य कमाया है, उससे हमें मनुष्य पर्याय मिली है, उसमें भी दो बातें धर्म की सुनने का सौभाग्य मिला है, और इतना ही नहीं उन धर्म की बातों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का मन भी कई कई बार हुआ है, ये भी सौभाग्य है। इन चीजों पर तो हमें गर्व होना चाहिए, इन चीजों का तो हमें गौरव होना चाहिए, इतना तो मिला हमारे लिए। अगर एक आंख कमती मिलती तो कैसा लगता, दोनों मिली है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए अपने को। ठीक है, आंख में लगाने का और बढ़िया गोल्डन वाला चश्मा नहीं मिला तो नहीं मिला, अब उनको मिला है तो ठीक है, अपनी तो आंख वैसे भी छोटे मोटे किसी चश्मे से काम चला लेंगे। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमने विचार किया है कि अपने मन को खराब नहीं करेंगे, अपने मन की प्रसन्नता को, अपने मन की निर्मलता को हम खंडित नहीं होने देंगे। अगर हमने इतनी बात अपने जीवन में धीरे धीरे शुरू कर दी तो सच्चाई इससे बड़ी और क्या है। जीवन उन्हीं का सच बनता है, वे ही सच को पा पाते हैं जो कषायों से मुक्त होकर के आत्मस्थ हो जाते हैं। सच को पाना, सच्चा होना और सच्चा बोलना, ये तीनों ही चीजें हमें अपने जीवन में और सीख लेनी चाहिए। सच को पाने का अर्थ तो बहुत सीधा सा है कि हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करें। सच्चाई संसार में इतनी ही है कि हम अपनी प्योरिटी को फील करें, हम अपनी निर्मलता को फील करें और उसमें ही लीन आत्मस्थ हो जाए, यही सच को पाना है। निर्विकार हो जाना ही सच को पाना है, और चारों कषायों के अभाव में जो हम अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं वास्तव में वही सच्चाई है। लेकिन उस सच को पाना इतना आसान थोड़ी है, सच को पाने के लिए तो सच का आचरण करना पड़ेगा, सच होना होगा, भीतर से सच्चा होना, और फिर जो भीतर से सच्चा हो जाता है उसके द्वारा जो भी बोला जाता है वो सब सच होता है। हमारा लक्ष्य सच को पाने का हो, हमारा संकल्प सच्चे होने का हो, और हम झूठ वचन से बचते रहें, यदि इतना हम पुरुषार्थ कर लें तो हमारे जीवन में बहुत ऊंचाई और अच्छाई धीरे धीरे करके आए बिना नहीं रहेगी। एक छोटी सी घटना है, एक पिता के चार बेटे थे, पिता का बहुत मन था कि वे सच को प्राप्त कर ले। वैसे तो आज माता पिता का मन यही होता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे बने और सच्चाई को जाने, लेकिन अपना अपना पुण्य पाप भी तो सबके साथ लगा हुआ है, किसी के चाहने अकेले से थोड़ी कुछ होता। पिता ने तो बहुत चाहा कि चारों बेटे सत्य को पालें, और उन्होंने कहा भी कि जाओ जैसे बने और सच को पाकर के लौटना, मैं जब तक तुम्हारा यहां पर इंतजार करूंगा। अपन तो विदेश भेजते हैं कि पढ़ के लौटना, लेकिन कौन लौटता है, बहुत बड़ी बड़ी स्कूल में, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में अपन भेजते हैं बच्चों को, काहे के लिए भेजते हैं कि दो रोटी कमाने लायक विद्या सीखा, सत्य को प्राप्त करके लौटना, ऐसा तो मेरे ख्याल से आज कोई अपने बेटे को नहीं कहता होगा कि जाओ जीवन में और देखो, अपने अनुभव से जानो कि सच्चाई क्या है, उसको पाकर के लौटना नहीं, सिर्फ दो रोटी और अपनी आजीविका चलाने के लिए थोड़ी बहुत विद्या सीख के आ जाओ, ताकि जरा ढंग से कार में घूमते हुए जीवन व्यतीत करो और अच्छे डनलप पर सो और कूलर में जीवन व्यतीत करना, बस यही सच्चाई है जीवन की। जिनके जीवन में इतना पा लेना ही सच को पा लेना है, उनसे तो अपन को कोई बात ही नहीं करनी है। अपने मन में भी ऐसा बात ऐसी ऐसा मन हो जावे तो ये सच्चाई, अगर सचमुच में ये सब सच्चाई होती तो आज तक अपन को मिल गई होती। सबके पास सब कुछ तो है, लेकिन इसके बाद भी क्या जीवन सच्चा हो पाया, क्या हमने सच्चाई को पा पाया है? बल्कि कुछ दिन के बाद ये सारी चीजें बेमानी मालूम पड़ने लगती हैं, व्यर्थ मालूम पड़ने। पिता ने भेजा कि सच को प्राप्त करके लौटना। एक निश्चित समय पर उन चारों ने तय किया कि 12 वर्ष तक अपन खोज करेंगे और वापस लौटेंगे और एक स्थान पर मिलेंगे और फिर पिता के साथ एक साथ चलेंगे। और ऐसा ही हुआ 12 वर्ष में, और लौटे। पिता तो बहुत अशक्त हो गए थे, अपने बिस्तर पर लेटे हुए जब उनको खबर मिली कि चारों बेटे लौट के आए हैं, बड़े खुश हुए कि इससे पहले कि जीवन पूरा हो बच्चों से पूछ लें कि उन्होंने सच को पा लिया है या नहीं पाया। पहले वाले बड़े बेटे से पूछा कि सच को पाया, तो उसने बहुत सारी गाथाएं और ऋचाएं ग्रंथों की सुना दी जो सच के बारे में बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों ने लिखी थी, वो सब ऋचाएं और गाथाएं सुना दी। पिता को संतोष नहीं हुआ, दूसरे से इशारा किया कि क्या तुमने सच को पा लिया। उसने बहुत सारे सच्चाई के जो सूत्र थे उन सूत्रों को दोहरा दिया। पिता को उससे भी संतोष नहीं हुआ। तीसरे वाले ने तो विभिन्न धर्मों में जो सुभाषित थे, अच्छी अच्छी बातें थी, वो सब पिता को सुनाई सच के बारे में। पिता उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि हमारा इनको जन्म देना व्यर्थ हो गया। 12 बरस तक मैं इंतजार करता रहा कि सच को पाकर के लौटेंगे, लेकिन ये तो सच के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं, सच को इन्हें प्राप्त नहीं किया। सच के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेने का नाम सच को पाना नहीं है। चौथे वाले बेटे की तरफ थोड़ी आशा भरी नजर से देखा तो फौरन उस चौथे वाले बेटे ने पिता के चरणों में झुक करके प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न भाव से बस पिता को एक दृष्टि भर करके देखा और अपनी आंख नीची कर ली। पिता बहुत प्रसन्न हुए, उठ करके उसे अपने गले लगाया और कहा कि मरने से पहले मुझे संतोष है कि मेरे एक बेटे ने सत्य को प्राप्त कर लिया। सत्य को प्राप्त करने के मायने इतना ही है कि हमारा जीवन अत्यंत शांत और राग द्वेष से रहित हो गया। ये प्रतीकात्मक घटना है। क्या हम ऐसा ही अपने जीवन में सच को पाने का लक्ष्य बना सकते हैं? हमें बनाना चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसी ही सच्चाई को, जो कि राग द्वेष से रहित है, जिसमें कि चारों कषायें नहीं है और फिर हम जान रहे हैं सारे संसार को, वास्तव में तो वही सच को पा लेना है। लेकिन इस सच को पाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, सच्चा होना पड़ेगा, भीतर से सच्चा होना। जिसका मन जितना सच्चा होगा उसका जीवन भी उतना ही सच्चा होगा, जिसका व्यवहार जितना सच्चा होगा उसका जीवन उतना ही सच्चा होगा, और जिसकी वाणी में जितना सत्य होगा उसका जीवन उतना सच्चा होगा। तो जीवन को सच्चा होने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि हम अपने मन को सच्चा बनाएं, और उसके लिए आचार्य भगवंतों ने 8 बातें लिखी हैं। सच्चाई को पाने के लिए जब हम सच्चा होने की तरफ कदम बढ़ाएं, तो पहला कदम है कि हम सच्चाई के प्रति कभी संदेह ना करें। हम लोग झूठ को तो सच मान लेते हैं, लेकिन कोई सच कहे तो हम संदेह कर लेते हैं। पहली चीज, जैसे हमें मालूम पड़े कि हाँ ये सच है, हम कभी सच के प्रति संदेह ना करें। संसार में यदि झूठ से हमें सारा संसार मिलता हो, तब भी हम संसार की कोई आकांक्षा ना करें, बल्कि सच की ही आकांक्षा करें, तो हमारा जीवन सच्चा हो सकता। तीसरी बात, कभी सच से हम घृणा ना करें और सच्चे व्यक्ति से घृणा ना करें। होता यह है, हम अपने को सच्चा बनाना चाह रहे हैं असल में, इसलिए ये जरूरी है। होता अक्सर ये है कि हम और एक सच्चे और अच्छे आदमी को बड़ी हिराकत की नजर से देखते हैं, बड़ा बुद्धू मानते हैं, आउट ऑफ डेट मानते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। हम हमेशा सच से घृणा करने से बचते रहें, और कितने भी प्रलोभन आ जावे, लेकिन हम अपने सच्चे मार्ग से विचलित ना, हम सच्चे मार्ग पर चलें। ऐसी कुछ बातें हमें अपने जीवन में शामिल करनी पड़ेंगी। सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की गलतियां हो सकती हैं, हम उन गलतियों को इग्नोर करें, और सच के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी चूक जा सकता है, गिर भी सकता है। हम उस सच्चे व्यक्ति की एकाध बार की चूक को इग्नोर तो करें ही, बल्कि उसे उसे संभालने के लिए अवसर दें, और स्वयं भी अगर अपन कभी सच्चाई से विचलित हो जाते हैं तो अपने को संभाल लें। और जब भी मन में प्रेम भाव उमड़े, तो सच्चाई के प्रति ही प्रेम करें। हम सच्चाई का सम्मान करना भूल गए हैं। हम जितना ज्यादा दुनिया में झूठ का सम्मान करने लगे हैं, झूठे व्यक्ति का सम्मान करने लगे हैं, काश उसका 1% भी अगर सच्चाई का सम्मान और सच्चे व्यक्ति का सम्मान करना शुरू करें, तो हमारे अपने जीवन में सच्चाई आना शुरू हो जाएगी। एक बहुत छोटी सी घटना में हमेशा याद आती है मुझे ऐसे मौके पर, विदिशा की घटना है। 1992 में मैं चतुर्मास कर रहा था, एक पिता अपने बेटे को लेकर आए 5 बरस के, और मेरे से कहा कि आज जीवन में मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। मैंने कहा क्यों, क्या इस बेटे ने कुछ कह दिया? बोले नहीं, इसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा सच ही बोला, लेकिन आज पता नहीं इसने मेरे से झूठ बोला। मेरी 5 बरस की साधना आज मुझे लग रही है कि नष्ट हो गई। मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया था कि अपने पुत्र को सच्चा बनाऊंगा, कभी उससे मेरे सामने झूठा ना होना पड़े, झूठ ना बोलना पड़े। मैं ऐसा अपना जीवन जीऊंगा जिससे कि उसे झूठ बोलने का अवसर ही ना मिले। लेकिन आज पता नहीं मेरे से भी उसने झूठ बोला। दुनिया से झूठ बोला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे से झूठ बोलने की एक बार उसकी आदत बन गई, तो अब तो मेरा होना नहीं होना व्यर्थ ही। इतने दुख से उन्होंने इस चीज को कहा। मैंने कहा मैं इससे बात कर लूंगा, आप जाइएगा, कोई ना कोई बात होगी, छोटे बच्चे ऐसे झूठे नहीं होते, कोई ना कोई उनके मजबूरी हुई होगी, कोई ना कोई उनका प्रबल संस्कार उनके भीतर होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सचमुच अपने पिता से झूठ बोला? उसने कहा बोला। क्या मजबूरी थी? उसने कहा कुछ नहीं, मैं आपको पूरी बात बता देता हूं, पिता से तो मैंने नहीं बताई। हुआ क्या था कि कल मुझे थोड़ा हेडेक था, और मैं अपने जो गणित के सवाल थे वो ठीक ठीक हल नहीं कर पाया, और मैं ऐसे स्कूल चला गया। और स्कूल में जब गुरुजी ने पूछा कि सबने अपने अपने सवाल कर लिए, तो मैंने तो नहीं किए थे, तो मैंने स्पष्ट होके खड़े होके और कहा कि मैंने नहीं किए। तो गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा भी और मारा भी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे बाजू वाला जो लड़का था उसने भी सवाल नहीं किए थे, लेकिन वो अपनी कापी बंद किए चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा, उसने झूठ बोल दिया कि मैंने कर लिए हैं, और गुरुजी ने उसको कुछ नहीं कहा। मेरे मन में पहली बार ये बात आई कि यदि मैं भी झूठ बोल देता तो मैं भी डांट से और पिटाई से बच जाता। अब यदि मैं झूठ का सहारा लूं तो मुझे लाभ ज्यादा है, मैं घर पहुंच करके यह बात ज्यों की त्यों हमेशा की तरह पिता को बताता। लेकिन उस दिन मेरे मन में आया कि यदि पिता को बताऊं कि मुझे आज सवाल हल न करने की वजह से डांट पड़ी है, तो हो सकता है कि पिता भी मुझे डांटे कि क्यों नहीं किए थे, इससे बेहतर है कि मैं पिता से झूठ बोल। और मैंने इसीलिए पिता से झूठ बोला। जब भी हम किसी की सच्चाई का सम्मान नहीं करते हैं तो मानिएगा हम उस व्यक्ति को झूठा होने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि हम सच्चाई का सम्मान शुरू कर देवे तो कोई व्यक्ति झूठा क्यों हो। असल में झूठे होने पर सम्मान ज्यादा मिलता दिखाई पड़ता है, तो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है इसमें ज्यादा लाभ है, जिसमें ज्यादा लाभ है वो काम करे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सच्चाई का सम्मान करने की आदत डालें। हम सच्चे नहीं हैं, हम झूठे हैं मान लो, फिर भी जो सच्चा है उसका हमें मन में सम्मान होना चाहिए। और आखिरी बात कि जहां बैठे सच्चाई के गुण गाएं तो हमारा जीवन भी सच्चा होना शुरू होगा। अभी तो हम झूठ के गुण गाते हैं। अपन ने जिन जिन चीजों से दूसरे को झूठ बोल करके कुछ अचीव किया है, अपने उस बड़प्पन को हांकते रहते हैं, अपनी आत्म प्रशंसा करते रहते हैं। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई सच्चाई है तो उसका गुणगान करें। जहां जहां भी सच्चाई है उसके हम गीत गाएं तो हमारा जीवन सच्चा होना धीरे धीरे शुरू होगा। और जिसका जीवन सच्चा हो जाता उसके द्वारा बोला गया ही सच है, क्योंकि फिर सच्चा व्यक्ति दूसरे को क्षति नहीं पहुंचा पाता। और यदि झूठा व्यक्ति है और सच भी बोलेगा तो दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए बोलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है पहले सच्चा होना फिर बाद में सच बोलना। झूठे व्यक्ति के द्वारा बोला गया सच भी बड़ा हानिकारक होता। सच बोलने का जहां कहा जाए वहां पर अर्थ सिर्फ इतने नहीं है कि जो बात जैसी है उसे वैसी कह देना। इतना यदि हम अर्थ लगाएंगे तो फिर हमने शायद न सत्य धर्म को समझा, न सत्य महाव्रत को समझा, न सत्य अनुव्रत को समझा, न भाषा समिति को समझा, न हमने वचन गुप्ति को समझा। आचार्य भगवंतों ने इतनी सारी बातें हमारे अंदर सच बोलने से पहले इन सब चीजों के विचार करने के लिए बोल कह दिया। पहली चीज, जहां तक बन सके वचन का उपयोग मत करना, जितना हो सके वचन का प्रयोग करने से बचना। ना हो सके तो अशुभ वचन, अशुभ वचन वे सब हैं जो दूसरे के लिए अहितकारी है, वे सब वचन अहित अशुभ। अशुभ की इतनी ही परिभाषा बनाई, अप्रशस्त यानी दूसरे को हानिकारक, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले सारे वचन अशुभ। बहुत गौर से सुनिएगा, टेप कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने जिस तरह लिखा है उसको अपन ठीक ठीक ढंग से समझें। मैं भी कहीं चूक सकता हूं तो उसे फिर मैं सुधार लूंगा, पर हम सब इस चीज को बहुत गौर से समझें कि सबसे पहले तो वचन का उपयोग ना करना पड़े। सबसे श्रेष्ठ तो यही है, इसी को कहते हैं वचन गुप्ति। लेकिन थोड़ी सी रियायत दी है उसमें कि अशुभ वचन से मौन हो जाने का नाम भी है वचन गुप्ति। समस्त प्रकार के वचन का त्याग कर देना वचन गुप्ति है, लेकिन अशुभ वचन का त्याग कर देना यह भी वचन गुप्ति है। और जब हम समस्त अशुभ वचन का त्याग कर देते हैं पूर्णतः और सत्य बोलने का संकल्प करते हैं तब वो कहलाता है सत्य महाव्रत। जीवन भर के लिए ये लिया जाता है। और पर्वतकार कठोर निंद नहीं वचन उचारे, और तो सब बोलेंगे लेकिन दूसरे को चोट पहुंचाने वाले निंदनीय और कठोर वचन का त्याग करना, ये जो है सत्य अनुव्रत कहलाता है। इतनी सब चीजें हो जाने के बाद किसी ने सत्य महाव्रत धारण कर लिया या किसी ने सत्य अनुव्रत धारण कर लिया, सत्य वचन बुद्धि तो देखने में आएगी नहीं। आज ऐसे कोई महान योगी नहीं है जिनको की वचन गुप्ति हो या मनोगुप्ति हो या कि काय गुप्ति हो। तीनों गुप्तियों को धारण करने वाले विद्धिधारी मुनि महाराज का इस काल में अभाव। पर सत्य महाव्रत और सत्य अनुव्रत धारण करने वाले मुनि और श्रावक आज भी हैं, उनके लिए भी जीवन भर को जिन्होंने सत्य बोलने और असत्य से विरक्त होने का नियम ले लिया, उनके लिए भी दो चीजें और कही गई हैं कि जब भी बोलना, सत्य बोलने के लिए आपने नियम लिया है, फिर भी अगर भले लोगों से बोल रहे हो तो सत्य धर्म का पालन करना, और सब तरह के लोगों से बोल रहे हो तो हित मित और प्रिय वचन बोलना। ये भाषा समिति है। सत्सु जो सज्जन पुरुष हैं, जो आपके आशय को ठीक समझेंगे, उनसे सत्य धर्म का पालन करते हुए बोलना, फिर उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ना टाइम की लिमिटेशंस है ना और भी कोई लिमिटेशंस है, जितना हो उतना। लेकिन जब सब तरह के लोगों के बीच बोलना हो जो आपके आशय को ठीक समझ पाएंगे, नहीं भी समझ पाएंगे, तब भाषा समिति का पालन करना, यानी हित मित और प्रिय वचन बोलना। अब ये तीन चीजें आ रही, हितकारी वचन जो कि दूसरे के लिए और अपने लिए कल्याणकारी हो, जिससे अपना और दूसरे का स्वार्थ सदता हो, वो हितकारी वचन नहीं है, ये ध्यान रखना। जिससे अपना और दूसरे का कल्याण होता हो वो हितकारी वचन है। और मित के मायने क्या है, बहुत टेलीग्राफिक, टू द पॉइंट, प्रीशियस। दो से काम चलता हो तो तीन की आवश्यकता नहीं है। मित बोलना और तीसरी चीज प्रिय वचन बोलना। सामान्य रूप से कहने में यही आता है कि सच कड़वा होता है। कल मैं इस बारे में और बहुत ग्रंथ पलटता रहा और एक जगह मिल गया कि सच कड़वा नहीं होता, वो तो अमृत के समान ही होता है। जिनके भीतर ही विष है उन्हें वो विषाक्त मालूम पड़ता है, पर है तो वो अमृतमय है। इसलिए इतनी सारी बातें आचार्य भगवंत को बोलने पर लगानी पड़ी कि बोलना तो, लेकिन हितकर बोलना, टू द पॉइंट बोलना और प्रिय बोलना, ये तीन चीजें बहुत विचार करने की हैं। अपन इन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। सत्य की परिभाषा क्या बनाई, जो हितकर हो वो ही सत्य है। ऐसा सत्य जिससे दूसरे को क्षति पहुंचती हो झूठ के कैडर में है, ये सिर्फ जैन आगम की कहना चाहिए अपनी फिलॉसफी है सत्य के बारे में। दुनिया पूरी यही मानती है कि जैसा देखा वैसा का वैसा कह दो, जैसा सुना वैसा का वैसा कह दो, जैसा जाना वैसा का वैसा कह दो, इसको सत्य कहते हैं। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि ये सब चीजें बाद में, पहले ये देख लेना कि स्वपर कल्याण की भावना से बोला जा रहा है या कि मन की कड़वाहट से और क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य, इन चार से मिश्रित होकर के बोला जाए। इन चार से मिश्रित यदि सच भी है, जैसा आपने देखा वैसा का वैसा बोला है, लेकिन क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य से मिश्रित होकर के, इन शायद मोटिव अगर आपका गड़बड़ है, तब फिर मोटिव गड़बड़ हो जाने से, भीतर के भाव गड़बड़ हो जाने से वो सत्य भी झूठ में परिवर्तित हो। सबसे पहले तो सत्य बोलना, लेकिन सत्य बोलने के बाद ध्यान रखना कि बोलने की जरूरत क्या पड़ी है, मकसद क्या है बोलने का, इंटेंशन क्या है आपके। आप बहुत सत्यवादी हैं लेकिन आप बोल क्यों रहे हैं ये सच, ये तो देख लेना आप भीतर टटोल करके। आप दूसरे को या अपने आप को, दोनों स्थितियों, दूसरे को अपन चोर तो नहीं कहते लेकिन अपने को जो साहूकार साबित करने की बात है उससे भाव तो यही लगता है कि दूसरे को चोर साबित करना चाह रहे हैं। बहुत कठिन है ये मामला, इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा। भीतर के भावों को हम पहचाने कि हम मन में कितने सच्चे होकर के सच बोल रहे हैं। यदि मन में कहीं कोई दुराव है, मन में कहीं कोई क्रोध लोभ या भय, इस तरह की कोई कषायवश यदि हम बोल रहे हैं तो मानिएगा वो सत्य के कैडर में नहीं आएगा, उससे दूसरे का हित नहीं होगा। ये तीन चीजें ध्यान में रखने की हैं, सच बोलना है लेकिन ध्यान रखें अच्छे मन से बोलना है। कड़वे मन से सच बोला जाएगा तो वो सच भी झूठ में परिवर्तित हो जाएगा, और परिणाम का विचार कर लेना कि परिणाम क्या निकलेगा। आप बोल तो सच रहे, सच बोलना उद्देश्य सच बोलने का होना चाहिए, दूसरे के हित का होना चाहिए, और परिणाम यदि ठीक है, हम सच बोल रहे हैं हमारा उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा। परिणाम खोटा निकले, एक प्लान पहले से एक आइडिया लग जाता है कि इसके बोलने से क्या होगा, तब रुक जाना आवश्यक नहीं है। आप जैसे सत्यवादी और भी बड़े हैं, क्या जरूरत है आपके सच बोलने की, चुप हो जाओ। हाँ ऐसा लिखा हुआ बड़ा कठिन लगता है, ऐसा पढ़ने के बाद लगता है कि इस तरह तो चुप रहना ही ज्यादा, इतना कठिन है सच बोलना भी, इतना कठिन है सच को पाना तो कठिन है ही, सच होना भी कठिन है लेकिन सच बोलना भी बहुत कठिन। सापेक्ष बोलना, हमेशा किसी न किसी अपेक्षा से बोलना, और आचार्य भगवंतों ने तो इतनी बढ़िया बात लिखी है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। इसमें सारी चीजें आ गई। ये छह ढाला में दौलत राम जी ने जैसे कि दो लाइनों में सारा कुछ भर दिया जितना अपन ने विचार किया, जग सुहित कर सब अहित हर, सबका जिसमें भला हो किसी का भी बुरा ना, श्रुति सुखद सुनने में भी ठीक जान पड़े, सब संशय हरे किसी के मन में कोई डाउट ना हो सुनकर कि क्या कहना चाह रहे थे, और ऐसा लगे जैसे कि मुख चंद्र ते अमृत झरे। अपने वचन को हम क्या धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा नहीं बना सकते।